الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اکثر الصلاة علی یوم الجمعة فإنه یوم مشہود تشہده الملائکہ. فرمایا، جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، فرشتے اس دن حاضر ہوتے ہیں. لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّ عَلَيَّ إِلَّا بَلْغَنِي صَوْتُهُ حَيْثُ كَانَ. جو درود پڑھتا ہے، فرمایا، اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے، وہ کہیں بھی ہو. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، وَبَعْدَ وَفَاتِكَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی یہی کیفیت ہوگی؟ تو میرے حضور نے فرمایا، وَبَعْدَ وَفَاتِ، ہاں، میری وفات کے بعد، میرے وصال ظاہری کے بعد بھی یہی کیفیت ہوگی، درود تم پڑھو گے اور تمہاری آواز مجھ تک پہنچ جائے گی. اور پھر اس کی وجہ بھی ارشاد فرمائی، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کی پر نور ساعتیں اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں لٹا رہی ہیں. اللہ کریم ہم سب کو اس کی برکتیں سمیٹنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین، نویں تراوی ہے اور نواں سپارہ. اس پارے میں کسی بھی قوم پر عذاب الہی آنے کا اصول کیا ہے، وہ ذکر کر دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا بھی تذکرہ موجود ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کا ذکر ہے. بنی اسرائیل نے جو بچھڑے کی پوجا کی تھی، اس کا ذکر ہے. اور عالم ارواح میں لوگوں نے جو عہد کیا تھا، اس کا بھی ذکر ہے. بلعم بن بعورہ، اس کا واقعہ بیان ہے. کامل ایمان والوں کے پانچ اوصاف کا ذکر ہے. غزوہ بدر کا ذکر بھی موجود ہے. اور نہی عن المنکر سے رکنے کا جو نقصان ہے، وہ بھی ذکر کیا گیا. یعنی لوگوں کو برائی سے منع ہی نہ کرنا. اس طرح کے تمام موضوعات جو ہیں وہ اس پارے کے اندر موجود ہیں. آئیے چند ایک کی مختصر وضاحت میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. سب سے پہلے بات ہے، کسی بھی قوم پر جو عذاب الہی آیا کرتا ہے، اس کا اصول کیا ہے. مفسرین نے لکھا کہ قرآن کی آیات مجینات میں اللہ رب العزت نے جو اصول دیا ہے کہ جب بھی کسی علاقے میں اللہ کے نبی علیہ السلام مبعوث ہوتے، اللہ کی طرف سے ان کی رشد و ہدایت کے لیے آیا کرتے تھے، تو وہ لوگوں کو شرک سے بچنے کی تعلیم دیتے. اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور اس کی طرف سے آنے والی شریعت پر عمل کرنے کی دعوت دیا کرتے تھے. اپنی صداقت کے لیے، اپنی حقانیت کے لیے وہ معجزات دکھاتے اور عذاب الہی سے بندوں کو ڈرایا کرتے تھے. لیکن اگر लोग हठ धर्मी पर कायम रहते तो फौरन फिर भी उनके ऊपर अजाबे इलाही नहीं आया करता था, बल्कि पहले उन्हें अजमाइश में डाला जाता था ताकि वो हक की तरफ रुजू कर लें। अगर सख्तियां कारगर न होती तो नेमतों की कसरत देकर फिर उन्हें मुतनब्बे किया जाता, मगर जब वो फिर भी ना संभलते तो आखिरकार अजाब इलाही के मुस्तहिक ठहरते थे। ये कुफारे कुरैश और दीगर कुफार को तंबीह की गई कि वो कुफर छोड़कर अल्लाह तबारक व ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की इताअत को, उनकी फरमा बरदारी को इख्तियार कर लें। अल्लाह तबारक व ताला इस नौवें सिपारे में कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलना फी क़रियतिन मिन नबिय्यिन इल्ला अख़ज़ना अहलहा بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ کنز الارفان، ارشاد فرمایا، और हमने किसी बस्ती में कोई नबी ना भेजा मगर हमने उसके रहने वालों को सख्ती और तकलीफ में पकड़ा ताकि वो गिड़गिड़ाएं, यानी तंबीह की गई। फिर हमने बदहाली की जगह खुशहाली बदल दी, पहले मुसीबतें आई फिर उसके बाद नेमतों की फरावानी हो गई ताकि अब ये सुधर जाएं। तो फरमाया फिर हमने बदहाली की जगह खुशहाली बदल दी, यहां तक कि वो बहुत बढ़ गए और कहने लगे बेशक हमारे बाप दादा को भी तकलीफ और राहत पहुंचती रही है। तो हमने अचानक उन्हें पकड़ लिया और उन्हें इसका इल्म ना था। तो ये एक उसूल बयान कर दिया गया कि अजाब इलाही आने का, किसी भी कौम पर जो अजाब इलाही आता है उसका उसूल क्या होता है। इस बारे में हजरत मूसा अलैहि सलाम और फिरौन का जिक्र है आयत नंबर 103 और 129 तक। हजरत मूसा अलैहि सलाम की बिरसत और फिरौन, फिर फिरौन के जो पैरोकार थे उनका जिक्र है। मूसा अलैहि सलाम ने इनको दावत हक दी और कहा कि मैं तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से वाज़े निशानियां लेकर आया हूं और बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो। फिरौन ने मौजज़ात पेश करने के लिए कहा तो हजरत मूसा अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम ने अपना आसा जमीन पर डाला तो वो एक बहुत बड़ा वाज़े एक अजदहा बन गया। उन्होंने अपना हाथ गिरेबान से निकाला तो वो देखने वालों के लिए रोशन हो गया। फिरौन के सरदारों ने हक को कबूल करने की बजाय इससे जादू करार दे दिया। होना तो ये चाहिए था कि मुजजात को देखा है तो हक को कबूल कर लेते, लेकिन इसे हक समझने की बजाय, इस हक को कबूल करने की बजाय इन मुजजात को वो जादू कंसीडर करने लगे और कहा कि ये तुम्हें अपने मुल्क से निकालना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को जरा ढील दो और जादूगरों को जमा करो। जादूगर आ गए और उन्होंने फिरौन से कहा कि अगर हम गालिब आ गए तो हमारा इनाम क्या होगा। तो उसने कहा कि तुम हमारे मुकर्रबीन में से हो जाओगे, यानी बादशाह के जो करीबी बंदे होते हैं तुम्हारा शुमार उनमें से होने लगेगा अगर तुम मूसा अलैहि सलाम के ऊपर गालिब आ गए। तो जादूगरों ने हजरत मूसा अलैहि सलाम से कहा कि आप पहल करेंगे या हम पहल करें। मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि तुम पहल करो। जब जादूगरों ने अपनी रस्सियां जमीन पर डाल दी तो लोगों की निगाहों को सहर जदा कर दिया और उन्हें डरा दिया और उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा जादू ले आए। रस्सियां डाली तो वो छोटे छोटे सांप बन गए थे। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे नबी हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबी नवाली सलात व सलाम को हुक्म दिया कि अपना आसा जमीन पर डाल दें। वो आसा जब जमीन पर डाला गया तो एक बहुत बड़ा अजदहा, एक बहुत बड़ा सांप बन गया, और जादूगरों की जितनी भी चीजें थी, वो छोटे छोटे सांप थे, जमीन भर गई थी, वो सारे के सारे निगल गया, खा गया। इस तरह मौजजे की हकानियत और जादू का जो बुतलान था वो साबित हो गया। और यहां पर फिरौन जो है वो रुसवा हुआ, जादूगर सजदे में पड़ गए, अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान ले आए। फिरौन ने उन्हें धमकी दी कि मेरी इजाजत के बगैर तुम ईमान लाए हो, ये कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पांव जो है ये मुखालिफ सिमत में काट दूंगा और तुम्हें मैं सूली पर चढ़ा दूंगा। तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे ईमान लाने की वजह से हमें सजा देना चाहते हो। फिर उन्होंने अल्लाह तबारक व ताला से सबर और इस्तेकामत की दुआ की। इसके बाद फिरौन ने बनी इसराइल के बेटों को कत्ल करने और बेटियों को जिंदा छोड़ने का हुक्म भी दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को सबर की तलकीन की और कहा कि नेक अंजाम अहले तकवा के लिए है। अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, फअरसलना अलैहिमु तूफाना वल जराद वल कुम्मला वद दफादिया والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين। तो हमने उन पर तूफान और टिड्डी और पिस्सू या जुए और मेंढक और खून की जुदा जुदा निशानियां भेजी, यानी इन पर अजाब नाजिल हुआ, तो उन्होंने तकबर किया और वो मुजरिम कौम थी। वकानू कौम मुजरिमीन, जब भी उन पर अजाब की शक्ल जाहिर होती तो ये झूठे दावे करके हजरत मूसा अला नबी अलैहि सलातु वस्सलाम से दुआ करवा कर वो अजाब इलाही खत्म करवा लेते, और जब अजाब खत्म हो जाता फिर ये नाफरमानी में पड़ जाते। जब बार बार फिरौनियों को अजाबों से निजात दी गई और वो किसी अहद पर कायम न रहे और ईमान फिर भी न लाए और कुफर को न छोड़ा, तो जो मियाद उनके लिए, जो मुद्दत उनके लिए मुकर्रर फरमाई गई थी वो पूरी होने के बाद उन्हें अल्लाह तबारक व ताला ने दरियाए नील में गर्क करके हलाक कर दिया। क्योंकि हर कौम के लिए, हर उम्मत के लिए एक मुद्दत है, वली कुल्ल उम्मतिन अजल فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ। इस आयत में फरमाया गया और हर उम्मत के लिए एक मुद्दत मुकर्रर है, बस जब वो वक्त आ जाता है, वो मुद्दत पूरी हो जाती है, तो एक साथ के लिए ना तो उसे मुकद्दम किया जाता है और ना ही उसे मुअख्खर किया जाता है। और कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो जान इस दुनिया में आ गई है उसने मौत का जायका चखना है, और जिसका वक्त आखिर आ गया, वलन युअख्खिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, फिर वो हरगिज मुअख्खर नहीं होता। चाहिए तो ये था, एक अजाब आया उससे संभलते, समझते, सबक हासिल करते, जब वो दूर हो गया दूसरी नाफरमानियों में पड़ गए, फिर दूसरा अजाब, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, मुसलसल ये अजाबात का सिलसिला आया और सुधरने की बजाय वो दोबारा नाफरमानी पर उतर आते। यूं ही बछड़ा पूजने का शौक भी उन्होंने पूरा किया। दसवीं मुहर्रम के दिन फिरौन और उसकी कौम को गर्क करने के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने बनी इसराइल को दरिया से पार कर दिया, तो इनका गुजर एक ऐसी कौम के ऊपर से हुआ जो अपने बुतों के आगे जमकर बैठे हुए थे और उनकी इबादत कर रहे थे। यहां से बनी इसराइल के दिल में बछड़ा पूजने का शौक पैदा हुआ, जिसका नतीजा बाद में गाय परस्ती की शक्ल में नमूदार हुआ। उनको देख कर बनी इसराइल ने हजरत मूसा अला नबीना वाली सलातु वस्सलाम से कहा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, जिस तरह इस कौम के लिए कई माबूद हैं जिनकी ये इबादत और ताजीम करते हैं, माजल्ला हमारे लिए भी ऐसा ही एक माबूद बना दो। और कहने लगे या मूसा जअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा قال انكم قوم تجهلون। तो इस आयत में इस बात का जिक्र है और ये इन्होंने क्यों कहा, कहते हैं ताकि हम भी इसकी इबादत करें और ताजीम को बजा लाए। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने इनके मुतालबे को रद्द कर दिया और रद्द करते हुए फरमाया बेशक तुम जाहिल कौम हो कि इतनी निशानियां देखकर भी ना समझे हो कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं और उसके सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं, क्योंकि वही माबूद है, वही मस्जूद है, वो वहदहु ला शरीक है, उसका कोई हमसर नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, वो यकता है, वो वाहिद है, बस उसी की तौहीद को मानना लाजिम है। इतनी निशानियों के बावजूद, इतने मोजजात के बावजूद बिलाखर तुम्हारी सोचें किधर चली गई हैं। चुनाचे अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है वजावजना बिबनी इसराइल अल-बहर फअतौ अला कौमी याकुफूना अला असनामिन लहुम कालू या मूसा जअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा قال انكم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون। और हमने बनी इसराइल को दरिया से पार कर दिया तो उनका गुजर एक ऐसी कौम के पास से हुआ जो अपने बुतों के आगे जम कर बैठे हुए थे, यानी इबादत कर रहे थे, उनकी ताजीम को बजा ला रहे थे। तो बनी इसराइल ने कहा कि ऐ मूसा, हमारे लिए भी ऐसा ही एक माबूद बना दो जैसे इनके लिए कई माबूद हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम यकीनन जाहिल लोग हो, बेशक ये लोग जिस काम में पड़े हुए हैं वो सब बर्बाद होने वाला है और जो कुछ ये कर रहे हैं वो सब का सब बातिल है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको गोया के तंबीह भी कर दी और अल्लाह के अजाब से डरा भी दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दीदारे इलाही की तमन्ना करना, उसका जिक्र भी इस बारे में मौजूद है। हजरत मूसा अला नबीना वाली सलातु वस्सलाम को कलाम रब्बानी की लज्जत इसके दीदार का आरजूमंद बना देती है, यानी जब कलाम की लज्जत नसीब हुई तो इससे दीदार की जो आरजू थी वो दिल में पैदा हो गई। चुनाचे अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अर्ज की ए मेरे रब, मुझे अपना जलवा दिखा ताकि मैं तेरा दीदार कर लूं। यानी सिर्फ दिल या ख्याल का दीदार नहीं मांगता बल्कि मुझे आंख से दीदार इलाही चाहिए कि जैसे तूने मेरे कान से हिजाब उठा दिया तो मैंने तेरा कलाम कदीम जो है वो सुन लिया, ऐसे ही मेरी आंख से भी पर्दा हटा दे ताकि तेरा जो जमाल है वो भी मैं देख सकूं। अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि पर कलीम मूसा, तुम दुनिया में मेरा दीदार करने की ताकत नहीं रखते। चुनाचे इस बारे में अल्लाह करीम ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया और जब मूसा अलैहि सलाम हमारे वादे के वक्त पर हाजिर हुआ और उसके रब ने उससे कलाम फरमाया तो उसने अर्ज किया मेरे रब, मुझे अपना जलवा दिखा ताकि मैं तेरा दीदार कर लूं। अल्लाह ने फरमाया तू मुझे हरगिज न देख सकेगा, अलबत्ता इस पहाड़ की तरफ देख, ये अगर अपनी जगह पर ठहरा रहा तो अनकरीब मुझे देख लेगा। फिर जब उसके रब ने पहाड़ पर अपना नूर चमकाया तो उसे पाश पाश कर दिया, यानी पहाड़ में वो ताकत ही ना थी और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर जमीन पर तशरीफ ले आए। फिर जब होश आया तो अर्ज की, तू पाक है, सुबहानका तुबतु इलैका, मैं तेरी तरफ रुजू लाया और मैं सबसे पहला, अना अव्वलुल मुमिनीन, और मैं सबसे पहला मुसलमान हूं। तो मेरे चैनल के नाज़रीन, हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात अल्लाह तबारक व ताला ने दना फतदल्ला फकान कब कौसैन औ अदना के मरातिब पर फायज किया, और मेरे हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीदार किया जैसा रब की शान के लायक है। आलम अरवाह में अहद जो लिया गया, आयत नंबर 172 में उसका जिक्र है। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अला नबी वाली सलातु वस्सलाम की नस्ल में कयामत तक आने वाले तमाम के तमाम इनकी रूहों को जमा किया और फरमाया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सबने कहा कि हाँ, तू ही हमारा रब है। इस अहद की याद दहानी के लिए उसे यहां जिक्र किया ताकि कोई ये ना कह सके कि हमें याद नहीं था, ये शिर्क हमारे बाप दादा से हमें मिला है, क्योंकि आलम अरवाह में हर एक ने ये इकरार किया था। जी हां, हर एक ने ये इकरार किया था कि अल्लाह ही हमारा रब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वाइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अन्फुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहीदना अन तकूलु यौम अल-क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा ग़ाफ़िलीन औ तकूलु इन्नमा अशरका आबाउना मिन क़ब्लु व कुन्ना ज़ुर्रियतन मिन बादिहिम अफ़तुहलिकुना बिमा फ़अल मुब्तिलून। और ऐ महबूब, याद करो जब तुम्हारे रब ने औलाद आदम की पुश्त से उनकी नस्ल निकाली। ये आलम अरवाह की बात है, औलाद आदम की पुश्त से उनकी नस्ल निकाली और इन्हें खुद इन पर गवाह बनाया और फरमाया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो सबने कहा था भला, क्यों नहीं, शहीदना, हमने गवाही दी। ये इसलिए हुआ ताकि तुम कयामत के दिन ये ना कहो कि हमें इसकी खबर ना थी, या ये कहने लगो कि शिर्क तो पहले हमारे बाप दादा ने किया और हम उनके बाद औलाद हुए, यानी उनकी औलाद में से उनके बाद हम आए। बाप दादा पहले थे, वो शिर्क पहले कर गए और हम उनके बाद उनकी औलाद हुए, तो क्या तू हमें इस पर हलाक फरमाएगा जो अहले बातिल ने किया? इसी तरह बलअम बिन बाओरा का वाकया भी मौजूद है। इसके लिए आयत नंबर 175 का मुताला किया जा सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमूम रिसालत की दलील को वाजे किया गया और फरमाया गया, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ अल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्द ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون। तुम फरमाओ, ए लोगो, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूं जिसके लिए आसमानों और जमीन की बादशाहत है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही जिंदा करता है और मारता है, यानी वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है। और फरमाया, तो ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर जो नबी हैं किसी से पड़े हुए नहीं हैं, अल्लाह और उसकी तमाम बातों पर ईमान लाते हैं और उनकी पैरवी करो कि तुम हिदायत पालो। यानी पैरवी का जो मकसद है उसे भी बयान कर दिया गया ताकि तुम्हें हिदायत मिले। तो इस आयत में यह जिक्र किया गया है, प्यारे महबूब सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों से यह फरमा दे कि तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर मैं आया हूं। ऐसा नहीं है कि बाज का तो रसूल हूं और बाज का नहीं हूं। بلکہ اب قیامت تک جتنے بھی مسلمان آنے والے ہیں سب کے لیے اللہ کے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول بن کر آئے، کیونکہ آپ کے بعد اب قصر نبوت مکمل ہو چکا ہے اور آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ تو یہ آیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عموم رسالت کی دلیل ہے کہ آپ تمام مخلوق کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، تمام مخلوق کے لیے رسول بن کر آئے ہیں، اور کل جہان میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یوں ہی مدنی چینل کے ناظرین، اس کے بعد ہے سورۃ الانفال۔ صحیح قول کے مطابق یہ سورۃ مدنی ہے، اس سورۃ میں 10 رکوع ہیں اور 75 آیات مجنات ہیں۔ انفال یہ نفل کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے غنیمت کا مال۔ اس سورت کی پہلی آیت میں چونکہ انفال یعنی مال غنیمت کے احکام کے بارے میں مسلمانوں کے سوال اور انہیں دیے جانے والے جوابات کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ انفال رکھا گیا۔ آیت نمبر 2 تا 4 میں اللہ تبارک و تعالی نے کامل ایمان والوں کی صفات اور ظاہری باطنی کیفیات کا ذکر کیا ہے، اور ان میں جو پہلی ہے کہ مومن صرف اللہ کا ذکر سن کر لرز اٹھتے ہیں۔ جی ہاں، الحمدللہ کہ مومن کے سامنے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو یہ لرز اٹھتا ہے اور آیت قرآنی سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ان کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے، اخلاص کے ساتھ نمازیں قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے مومنوں کے لیے بلند درجات والے رزق کی بشارت ہے۔ آئیے سماعت فرمائے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، فرمایا یہی سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو سچوں میں شامل فرمائے۔ اس کے علاوہ غزوہ بدر کا ذکر ہے، نہی عن المنکر سے رکنے کے نقصانات ہیں۔ تو ہمیں چونکہ اس امت کی جو افضلیت ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو ان نیک اعمال پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دعا گو ہیں، اللہ کریم اس ماہ محترم میں ہمیں اسے راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔
حرم میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی۔